श्रीमद् भागवतम छठा स्कंद दसवां अध्याय श्लोक संख्या 1 से लेकर 7 तक अभी हम पढ़ेंगे। लेकिन इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु अवगानंद से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन करने वाले हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare
Grantha Srimad Bhagavata Mahapuran Ki Srimad Bhagavatam Shatastrand दसवां अध्याय जिसको हमने कुछ हफ्ते पहले पढ़ा था और बीच में डिसकंटिन्यू हो गया था उसी को हम अभी कंटिन्यू करेंगे। ये श्रीमद् भागवत महापुराण शास्त्र जो है वो मन को शुद्ध करने का, मन को पवित्र करने का, इससे बढ़कर और कोई उपाय हो नहीं सकता। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पूरी भगवद गीता बताने के बाद भगवान एक ही आदेश देते हैं कि आपको क्या करना है, मन मना, मन को मुझ में लगाओ, क्योंकि जो मन है ना वही वास्तव में हमारे सारे दुखों का कारण है। ये मन भगवान में नहीं लगता, मन जब सांसारिक विषयों की कामना करने लगता है ना तभी जीव दुखी होता है। मन जब भगवान के अंदर लग जाए ना तो कोई दुख नहीं होगा, कोई संकट नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इच्छाएं हमें इतना विचलित कर देती हैं। ये मन जब संसार के अंदर लग जाता है तो किसी वस्तु या व्यक्ति की जो कामना होती है ना, वास्तव में वही कामना ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं कि जो कामना है ना, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा वेदयेन इह वैरिणम। आप कभी ये मत समझना कि कोई दूसरा आपका शत्रु हो सकता है। हम जब समझते ना वो मेरा शत्रु है, वो मेरा शत्रु है, वो कंट्री हमारा शत्रु है, वास्तव में भगवान ने नहीं कहा सर। भगवान ने कहा आपका यदि कोई सबसे बड़ा शत्रु है ना तो कोई बाहर नहीं है, वो तो आपके हृदय में बैठा हुआ है और वो क्या है, कामना। हृदय के अंदर जो कामनाएं हैं वही आपकी शत्रु है और वही आपको बारंबार जन्म मरण के चक्कर में फंसाती है, वही आपको बार बार मरने के लिए विवश करती है, वही आपको बार बार जन्म लेने के लिए विवश करते हैं। इसलिए यदि अपने जीवन का कल्याण करना है तो मन से इस काम रूपी शत्रु को निकाल दो और भगवान कहते मन में मुझे बिठा लो। इतना तो कह दिया भगवद गीता में, परंतु कोई तो ऐसा उपाय हो जिससे संसारी वासनाएं, संसारी कामनाएं हृदय से निकल जाए और हृदय के अंदर आकर भगवान विराजमान हो जाए। तो शास्त्र कहता है एक अस्मात परम कश्चित मन शुद्धि न विद्यते। इस संसार में मन को शुद्ध करने वाला और कुछ नहीं है। मन को शुद्ध करने की उससे बड़ी और कोई औषधि नहीं है, उससे बड़ा और कोई साधन नहीं है। और वो साधन प्राप्त कैसे होगा, जन्मांतरे भवे पुण्य। जब कोई बहुत बहुत जन्मों तक पुण्य करेगा तब क्या होगा, तब उसे तदा भागवतम लभे, तब उसे श्रीमद् भागवतम महापुराण को श्रवण करने का अवसर प्राप्त होगा। और जब श्रीमद् भागवतम महापुराण को श्रवण करने का अवसर प्राप्त होगा ना फिर मन को साफ करने की आवश्यकता नहीं है, श्रवण करने से मन स्वतः साफ हो जाएगा। बस कमी है तो उन पुण्यों की जो जन्म जन्मांतर तक हमने किए नहीं है, इसलिए भागवत श्रवण करने का अवसर सबको नहीं मिलता। हम देखते हैं यहाँ पर भागवतम कितने समय से हो रहा है, बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते हैं करीब करीब जो कि भागवतम श्रवण करने का अवसर प्राप्त नहीं करते। इसमें उनका कोई कसूर नहीं है, वास्तव में उनके पास वो पुण्य ही नहीं है, वो पुण्य की पूंजी एकत्रित करनी पड़ेगी।
लोग कितना दूर दूर से आते हैं भागवतम श्रवण करने के लिए, लेकिन यहाँ पर दूर दूर से आते हैं लेकिन जो करीब करीब है वो नहीं आ सकते, उसका मतलब यही है कि क्योंकि उनके पास भागवतम श्रवण करने के लिए जो पुण्य की पूंजी चाहिए होती है वो नहीं है। जन्मांतरे भवे पुण्यम, जन्म जन्मांतर तक यदि कोई पुण्य करता है ना, तब कहीं जाकर उसे श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करने का अवसर मिलता है। तो इस कथन के अनुसार यदि हम अपने भाग्य की सराहना करें तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि वास्तव में हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और भागवतम श्रवण कर रहे हैं और भागवतम ही इस बात की गवाही दे रहा है कि ये भागवतम उसी को श्रवण करने को मिलता है जिसने बहुत बहुत पुण्य किए हैं। तो वास्तव में ये हमारे पुराने जन्मों के पुण्यों का प्रताप है कि हमको इतना सरलता से भागवतम श्रवण करने को मिलता है। वरना शास्त्रों में देखा जाए तो बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े राजा वो भी तरसते थे भागवतम महापुराण को श्रवण करने के लिए, और सब राजा जो थे वो राज रजवाड़े सब छोड़कर जंगल में कहीं जाते थे, किसी भक्त को ढूंढते थे जो उन्हें भागवतम महापुराण को श्रवण कराते ना? लेकिन हमें तो कुछ छोड़ना भी नहीं पड़ता, इतनी सरलता से हमारे घर तक भागवतम आता है हमको श्रवण कराने के लिए। तो वास्तव में ये श्री प्रभुपाद जी की कृपा है कि वो हर जगह हर स्थिति में श्रीमद् भागवतम के अपने शिष्यों के द्वारा श्रीमद् भागवतम का प्रचार करा रहे हैं। भागवतम तो बहुत जगहों पर होता है, लेकिन वो भागवतम और ये जो भागवतम हम यहाँ कर रहे हैं, जो श्री प्रभुपाद जी के द्वारा हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उसमें भी अंतर है। उसमें क्या अंतर है कि भागवतम का बड़ा बड़ा आयोजन किया जाता है और जो वक्ता है वो पहले से डिमांड रखता है कि भाई मैं भागवतम करने के लिए आपके शहर में आऊंगा, उसके लिए मुझे इतना धन देना पड़ेगा, है ना? और ऐसा बताया जाता है, हम जानते हैं बहुत सारे वक्ताओं की इतनी डिमांड होती है, कोई कोई तो 10-10 लाख तक डिमांड करते हैं कि भाई भागवतम सुनाएंगे उसके बदले में आपको इतना देना पड़ेगा। लेकिन हम इतने समय से यहाँ पर भागवत श्रवण कर रहे हैं, श्रवण कराने वाले और यहाँ पर आयोजन करने वाले किसी से कुछ डिमांड नहीं करते, बल्कि बार बार मैसेजेस करते हैं कृपया आइए और भगवान की इस कृपा को आप स्वीकार कीजिए। भगवान की कृपा को स्वीकार करने के लिए रिक्वेस्ट की जाती है, भागवतम श्रवण कराया जाता है, उसके बाद प्रसाद खिलाया जाता है। तो कितना बड़ा हमारे ऊपर उपकार है भगवान का, जो हमें इतना आसानी से भागवत महापुराण को श्रवण करने का अवसर दे रहे हैं। तो ये हमारा अब हमारी रिस्पांसिबिलिटी है ना कि हम अपने इस लाभ का, जो भगवान ने हमें ये जो अवसर दिया है उसका पूरा पूरा लाभ उठाएं। तो हम सबका सौभाग्य है कि हमें श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करने का अवसर मिलना है। तो हमने देखा श्रीमद् भागवतम के इस सत्र में हमने पहले पढ़ा कि सारे जो देवता थे वो परेशान थे, क्योंकि महाराजा देवराज इंद्र के द्वारा गुरु बृहस्पति का अपमान हो गया और गुरु बृहस्पति देवताओं को छोड़कर चले गए। इंद्र ने तो बहुत ढूंढा, बृहस्पति जी नहीं मिले। फिर उनका जो श्रेय था, उनका यश था, उनकी जो शक्ति थी वो क्षीण होने लगी, और क्षीण होने के कारण वो असुरों से पराजित हो गए। फिर इंद्र ने सोचा कि अब मैं क्या करूं, बृहस्पति जी तो मिल रही नहीं है और गुरु के बिना तो श्रेय प्राप्त होना संभव नहीं है। ब्रह्मा जी के पास गए, बोला गुरु बृहस्पति ने मुझे त्याग दिया क्योंकि मुझसे उनका अपमान हो गया था, अब आप ही कुछ बताइए कि मैं कैसे अपने गुरु को वापिस मनाऊ। तब ब्रह्मा जी ने कहा देखो गुरु तो तुम्हें ऐसे नहीं मिलेंगे, वो तो नहीं मानेंगे, वो तो किसी गुफा में जाकर छुप गए हैं, तो तुम्हें मिलने वाले नहीं है। लेकिन यदि तुम देवताओं से विजय प्राप्त असुरों से विजय प्राप्त करना चाहते हो तो तुम क्या करो, टेम्पररी किसी और को गुरु बना दो। तो बोला अच्छा ऐसा कोई है, जिसको मैं गुरु बना। बोला हाँ, कृष्णा का जो पुत्र है विश्वरूप वो बहुत ही ज्ञानी है, तुम उसको गुरु बना लो तो अवश्य तुम्हारा जो राज्य असुरों ने छीन लिया है वो तुम्हें वापस प्राप्त करा देगा। इंद्र गए कृष्णा के पुत्र विश्वरूप के पास और कहा कि हम आपसे एक याचना लेकर आए हैं, कृपया हमारे गुरु पर गुरु बन जाइए। विश्वरूप ने कहा वैसे तो मैं छोटा हूँ आयु में भी और स्टेज में भी, लेकिन फिर भी आप मुझसे याचना कर रहे हो तो ठीक है, मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूँ। और विश्वरूप ने देवताओं का गुरु बनना स्वीकार किया। विश्वरूप ने देवताओं को नारायण कवच दिया जो कि उनको अथर्व ऋषि के द्वारा प्राप्त हुआ था, और इसके प्रताप से देवताओं ने असुरों से विजय प्राप्त करी। लेकिन देवताओं ने विश्वरूप को कहा हमारी शक्ति बढ़े इसलिए तो यज्ञ करो। और जब विश्वरूप यज्ञ कर रहा था, विश्वरूप के तीन मुख थे, एक मुख से वो देवताओं के लिए यज्ञ दे रहा था क्योंकि देवता उसके क्या लगते थे, चाचा लगते थे। इंद्र जो था वो त्रिष्ठा का भाई था, त्रिष्ठा जो था बहुत बड़ा देवता है और इंद्र उसका भाई है, तो फिर देवता उनके क्या लगते थे, चाचा लगते थे। लेकिन उनकी माता का संबंध असुरों से था इसलिए असुर उनके क्या लगते थे, मामा लगते थे। तो उन्होंने सोचा देवताओं को तो शक्ति प्रदान हो रही है, मामा बेचारे ऐसे ले जाएंगे, तो एक साइड से देवताओं के लिए आहुति दे रहे थे, दूसरे साइड से असुरों के लिए आहुति दे रहे थे। इंद्र को जब पता लगा तो इंद्र को बहुत क्रोध आया और उसने सोचा ये क्या कर रहा है, इसको हमने इसलिए रखा है ताकि हमारी शक्ति बढ़े और इसने क्या किया है, असुरों की शक्ति बढ़ा रहा है, तो इसको तो जीवित रहने का ही अधिकार नहीं है, इसको गर्दन काट के मार डाला। और जब विश्वरूप की मृत्यु हो गई तो इंद्र दोबारा से श्रीहीन हो गया और गुरु की हत्या के कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा और इस ब्रह्म हत्या के पाप को वो सहन न कर सका और उसने उसको चार भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 25% उसने पृथ्वी को दिया, 25% वृक्षों को दिया, 25% जल को दिया और 25% स्त्री को दिया। इस तरह से अपने अपराध को तो इंद्र ने समाप्त कर दिया, लेकिन वो जो त्रिष्ठा था जिसका पुत्र था विश्वरूप, वो तो इंद्र को छोड़ने वाला नहीं था, उसके बेटे को मार डाला था, उससे इतनी प्रार्थना करके उसके बेटे को लेके गया कि मैं उसे गुरु बना रहा और उसको जाके मार डाला। तो त्रिष्ठा ने बोला अब तो मैं कुछ ऐसा करूंगा कि इंद्र नहीं बचेगा। फिर त्रिष्ठा ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया और यज्ञ में ब्राह्मणों को बोला ऐसा मंत्र पढ़ो कि हमारी शक्ति इतनी बढ़ जाए कि इंद्र परास्त होकर उसकी मृत्यु हो जाए। लेकिन ब्राह्मण क्योंकि नहीं चाहते थे कि इंद्र की हत्या हो, अब इंद्र यानी देवताओं का राजा, अगर देवताओं को कष्ट पहुंचता है ना तो सारे जीवों को कष्ट पहुंचता है, क्योंकि सारे जीवों के शरीर की हर अंग की रक्षा देवता करते हैं, जीवों को सारी वस्तुओं को प्रदान देवता करते हैं, जल का देवता वरुण है, वायु का देवता पवन है, सूर्य देव से तपस मिलती है, चंद्रमा से वनस्पतियों में पौष्टिक मिलती है, तो सारे देवता अगर सुरक्षित है ना तो समझो सारा समाज सुरक्षित है। तो इसलिए ब्राह्मणों ने सोचा अगर देवताओं को हार मिलेगी, देवता यदि परास्त हो जाएंगे या इंद्र की हत्या होगी तो संपूर्ण मानव जाति का हिरास होगा, इसलिए उन्होंने मंत्र तो पढ़ा क्योंकि त्रिष्ठा से सब भयभीत थे, मंत्र तो पढ़ा मगर थोड़ा सा गड़बड़ कर दी। उनको पढ़ना था इंद्र शत्रु विवर्धस्व, इंद्र शत्रु विवर्धस्व यानी इंद्र के शत्रु की शक्ति बढ़े और इंद्र के शत्रु जो है वो इतने शक्तिमान हो जाएं कि इंद्र को मारना है। लेकिन उन्होंने उसी मंत्र को थोड़ा सा डिफरेंट करके पढ़ा और बोला इंद्र शत्रु विवर्धस्व, इंद्र शत्रु विवर्धस्व, कि इंद्र की शक्ति इतनी बड़े कि वो अपने शत्रु को मार डाले। तो मंत्र में गड़बड़ हो गई। इसकी कारण क्या हुआ? उस यज्ञ में से एक बहुत ही भयंकर असुर प्रकट हुआ और उसका नाम क्या था? क्या नाम था? आप लोगों को कथा याद है ना, मैंने बताई थी। कौन प्रकट हुआ था? किसकी कथा पढ़ रहे? किसकी कथा पढ़ रहे? वृत्रासुर। वृत्रासुर जो असुर है वो प्रकट हो गया और वो इतना भयंकर था, इतना शक्तिशाली था कि जैसे ही वो प्रकट हुआ, जितने भी देवी देवताओं के जितने भी अस्त्र शस्त्र थे ना, वो ऐसे ऐसे फौरन से, जैसे बड़ी गदा आती थी तो उसको ऐसे तोड़ के फेंक देता था, कोई तीर आता था उसको ऐसे पकड़ के फेंक देता, मतलब वो इतना विशाल था कि देवताओं के सारे अस्त्र शस्त्र उसके सामने छोटे छोटे खिलौने की तरह हो गए थे। सारे देवता उसके सामने बिल्कुल छोटे छोटे लगते थे, यानी कि उनके अंदर बिल्कुल शक्ति। वो इतना विशाल था कि जब वो चलता था तो उसके पैर के नीचे करोड़ों देवता आगे बढ़ जाते थे, इतने ज्यादा विशाल है, बहुत विशाल काय वृत्रासुर। इसलिए उसको बोले सारे आकार को उसने वृत कर दिया था, आवृत कर दिया था, छिपा दिया था, कुछ दिख नहीं रहा था, सारी जगहों पे सिर्फ वही दिख रहा था, इतना भयंकर असुर था। और सारे देवी देवता वापस से हार गए और हारने के बाद अब उन्होंने वापस से जाकर ब्रह्मा जी से कहा कि अब वापस से गलती हो गई। ब्रह्मा ने बोला तुम सुधरने वाले नहीं हो, एक गुरु का अपमान किया, दूसरे गुरु को मार डाला, अब फिर भी वापस आ जाती हो मेरे पास। लेकिन इंद्र के इंद्र जो है वो भले कितनी भी गलतियां करे उसके अंदर एक क्वालिटी तो है, जब भी फंसता है ना या तो ब्रह्मा जी के पास जाएगा, क्योंकि महालोक के पास जाएगा तो उसको जाहिर सी बातें अच्छी एडवाइस मिलती है। वास्तव में आप किससे एडवाइस लेते हो ना वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। दुर्योधन का एडवाइजर कौन था? दुर्योधन किससे एडवाइस लेता था? शकुनी से, है ना? और अर्जुन किससे लेता था? दुर्योधन के पास भले नारायण सेना हो लेकिन जिससे वो एडवाइस लेता था, जिससे वो परामर्श लेता था वो खल था, इसलिए वो जीत नहीं सका। और अर्जुन के पास भले कोई नारायणी सेना नहीं थी, कृष्ण ने बोल दिया युद्ध नहीं करूंगा, हथियार भी नहीं उठाऊंगा, लेकिन सिर्फ परामर्श होगा। यदि परामर्श हमें परफेक्ट मिल जाए ना तो जीवन सुधर जाएगा। इसलिए यहाँ के देवताओं से ये तो सीखना चाहिए कि कभी भी फंसो तो किसी शुद्ध वैष्णव के पास जाओ, वहाँ से अवश्य एक सही दिशा निर्धारित होगी। फिर भले कितना ही बड़ा संकट हो, कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम हो, यदि सही रास्ता मिल जाएगा ना तो उससे पार हो सकते हैं। ब्रह्मा ने कहा मेरे पास तो इस वृत्रासुर का कोई इलाज नहीं है, चलो भगवान के पास चलते हैं। फिर सारे देवी देवता मिलकर भगवान के पास गए ब्रह्मा जी के साथ और ब्रह्मा जी को बोला कि भाई आप ही सुनाओ, मैं सुनाऊंगा तो ऐसा नहीं वापस डांट पड़ेगी, इंद्र ने बोला। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है मैं बताता हूँ, और सारी बात जो है वो बता दी भगवान को। फिर भगवान ने कहा कि ये तो बहुत ही तुम लोगों ने बुरा किया जो विश्वरूप को मार डाला, लेकिन अब तुम क्योंकि मेरी शरण में आए हो तो मेरी शरण में जो आता है उसका कल्याण करना तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है। मैं हर उस व्यक्ति का अपिहित सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव, अगर आप पापियों में सबसे बड़े पापी भी हो यदि मेरा भजन शुरू कर दिया, मेरा नाम जप करना शुरू कर दिया, मेरी शरण में आ गए तो फिर तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। अहम तो आप सर्व पापी हो, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। फिर तुम एक बार मेरी शरण में आ गए ना फिर मत सोचो भले कितने बड़े अपराधी हो, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। इंद्र को बोला कि अब इस वृत्रासुर को मारने का सिर्फ एक ही साधन है कि तुम जाओ दधीचि ऋषि से जाकर उसकी हस्तियाँ मांगो। दधीचि ऋषि कि जो हस्तियां हैं यानी हड्डियां वो इतनी पावर वाली है। क्यों पावर वाली है? क्योंकि दधीचि ऋषि ने बहुत बहुत तपस्या की है और तपस्या करने से जीव के शरीर में, जीव के हड्डियों में बहुत पावर आ जाता है। हम क्या समझते हैं, हम खाएंगे तो पावर आएगा। कभी कभी बोलते हैं बेचारा स्कूल जाता है ना, खा के नहीं जाएगा ना, अंडा सीखकर अंडा नहीं खा के जाएगा तो उसको पावर नहीं आएगा। या तो क्या बोलते हैं कि बेचारा सारा दिन काम करता रहता है तो इसको ज्यादा खिलाएंगे, एकादशी के दिन भी हम इसको उपवास नहीं करा सकते, एकादशी रखेगा तो कमजोर हो जाएगा। दधीचि मुनि कई टाइम से नहीं खा रहे थे, क्या कर रहे थे? तपस्या कर रहे थे, और तपस्या करने के कारण उसकी हड्डियों में इतनी शक्ति आ गई थी कि वो इतने महाभयंकर असुर जो कि सारे देवताओं के शस्त्र अस्त्र को फेल कर चुके थे उनको भी वो मारने की शक्ति रखते थे। तो इसका मतलब हमें ये समझना चाहिए कि केवल खाने से ही शक्ति नहीं बढ़ती है, तपस्या करने से भी शक्ति बढ़ती है। और इस कलयुग में तपस्या क्या है? चार नियम का पालन करो, 16 माला जप करो, एकादशी का उपवास करो, ये तपस्या है। और अगर हम ये तपस्या करते हैं तो हमारा शरीर भी शक्तिमान होता है, हमारी बुद्धि भी शक्तिमान होती है। इसलिए हमको कुछ भी हो जाए इन नियमों को नहीं तोड़ना चाहिए। तो देवता लोग को जब ये बोला तो इंद्र ने बोला भगवान किसी के पास भी भेज दो, मैं दधीचि ऋषि के पास नहीं जाऊंगा। क्यों? उसके पास क्यों? बोला उसके साथ से ही मैंने पंगा किया हुआ है। एक बार मैं उनके पास गया था ब्रह्म विद्या सीखने के लिए और उन्होंने मुझे ऐसे सिखाया कि मैंने उसको पहले से धमकी दी कि अगर किसी और को सिखाया तो गला काट दूंगा। कुछ दिनों के बाद वापस अश्वनी कुमारों को सिखाया, अश्वनी कुमार जब गए थे दधीचि मुनि के पास तो बोला कि हमें सिखाओ। दधीचि मुनि ने बोला आपको नहीं सिखा सकता क्योंकि इंद्र पहले से धमकी दे के गया है मुझे, वो मेरा गला काट देगा। अश्वनी कुमार ने बोला तुमको फिक्र करने की जरूरत नहीं, हमको टांका सर्जरी करना आता है, अभी वो तुम्हारी गर्दन काट देगा, उससे पहले हम तुम्हारी गर्दन काट देते हैं, हम यहाँ पर तुम्हारे सर पर घोड़े का सर लगा देंगे और उससे तुम हमें ये ब्रह्म विद्या सिखाओ, और फिर जब इंद्र आएगा और तुम्हारा गला काटेगा तो हम तुम्हारा असली वाला गर्दन वापिस से लगा देंगे, तो इसके लिए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फिर ऐसा ही हुआ, जब दधीचि मुनि ने विश्वकर्मा को अश्वनी कुमारों को सिखाया, अश्वनी कुमार जो है उन्होंने सीखा, जैसे इंद्र को पता चला आके दधीचि मुनि की गर्दन काट ली और फिर अश्वनी कुमार ने दोबारा से उसको जोड़ दिया, तो इंद्र ने कहा कि अब मैं वापस किस क्या मुंह लेके जाऊं उसके पास, है ना, एक बार उसको मार चुका हूँ, अब मैं वापस उसको बोलूं अपनी हड्डियां दो, हड्डियां भी कोई मांगने की चीज है तो कैसे जाके बोलूं। तब भगवान ने कहा तुम फिक्र नहीं करो, तुम उसको जाके बोलो कि मैंने बोला है, ये भगवान का आदेश है, और तुम ऐसा करना अश्वनी कुमारों को आगे रखना। अश्वनी कुमार क्योंकि दधीचि मुनि के शिष्य हैं तो शिष्य को देखकर गुरु के मन में स्वाभाविक प्रेम झलकता है, और शिष्य जब संकट में होता है तो गुरु की इच्छा होती है कि किसी तरह से मैं उसके संकट को दूर करूं, तो तुम आगे अश्वनी कुमारों को रखना और मेरा नाम लेना, मैं बोलना ना मुझे मैंने बोला है। तो वो कोई साधारण जीव नहीं है, वो दधीचि ऋषि है, वो तुम्हें जरूर दे देंगे। तो यहाँ से हम पढ़ रहे हैं श्री बालरायणी उवाच इन्द्रमेवं समादिश्य भगवान विश्वभावना पश्यतात्मनि मेषाणां तत्रैवान्तर्धरे हरि। इन्द्रमेवं समादिश्य, इंद्र को इस तरह से आदेश दिया किसने? भगवान विश्वभावना, वो भगवान जो संपूर्ण विश्व की रक्षा करते हैं, संपूर्ण विश्व का पालन करते हैं, संपूर्ण विश्व का सृजन करते हैं। यहाँ पर भगवान को कहा गया विश्व भावना, यानी भगवान जिस विश्व को पैदा करते हैं उसको पालन करने की भी जिम्मेदारी वो स्वयं लेते हैं। लेकिन मनुष्य इतना बुद्धिहीन है, वो समझता है कि यदि मैं कमाऊंगा नहीं तो खाऊंगा कैसे, है ना। लेकिन जो इतने बड़े बड़े हाथी खाने खाने में कौन ज्यादा खाता है? हाथी मन खाता है, बहुत सारा खाता है, लेकिन वो कभी कमाने के लिए तो नहीं जाता है ना, लेकिन भूखा नहीं मरता है, उसको रोज उसका आहार मिलता है। छोटी छोटी चींटियां होती हैं, वो छोटा सा कण खाती हैं, उनको भी प्राप्त होता है। लेकिन मनुष्य समझता है कि नहीं, भगवान की भक्ति से ज्यादा कमाना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कमाऊंगा नहीं तो मर जाऊंगा। लेकिन भगवान ने जिसको पैदा किया है जितने दिन के लिए, वो उतने ही दिन जिएगा और उसके भाग्य का उसको मिल ही जाएगा। इसलिए हमें अपनी सुरक्षा के लिए, अपने खान पान के लिए इतना ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। हम हमेशा भयभीत रहते हैं, कभी सोचते नहीं है कि वो परिंदे जिनके ऊपर छत भी नहीं होती है, नहीं आसमान के नीचे जब वो वृक्ष की टहनी पर रात को सोते हैं, वो भगवान उसकी भी रक्षा करते हैं, तो फिर हमें कैसे भूल जाएंगे जो उनका नाम भी लेते हैं। तो जो भगवान है उसके ऊपर पूरा भरोसा रखना चाहिए, पूरा विश्वास रखना चाहिए कि हम यदि भगवान का नाम लेंगे, हम यदि भगवान की भक्ति करेंगे, तो भगवान स्वयं हमारा पालन करेंगे। इन छोटी छोटी चीजों में परेशान होने के लिए ये मनुष्य जीवन थोड़े मिला है। ये मनुष्य जीवन तो अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिला है। इसलिए जो हमारे भाग्य में दुख आता है ना, बगैर किसी प्रयास के, बगैर किसी योजना के दुख आ जाता है, तो हमारे भाग्य का सुख भी आ जाएगा। अगर प्रयास करना है, अगर कोशिश करनी है, तो उस भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए जिसको पाने के लिए जन्म जन्मांतर से भटक रहे हैं। ये 84 ये मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, ये तो सब लोग कहते रहते हैं, लेकिन वो क्या मुश्किल है जानते हैं? 84 लाख योनियों को भटकने के बाद कहीं जाकर मनुष्य जीवन मिलता है, और इस मनुष्य जीवन में भी वही आहार विद्रा के लिए परेशान रहते हैं। ये खाना है, वो खाना है, ये पहनना है, वो यहाँ घूमना है, ये प्राप्त करना है, ये प्राप्त करना है, ऐसे करते करते जीवन ही समाप्त हो जाता है, फिर ना जाने कब मिलेगा ये मनुष्य जीवन। इसलिए इस मनुष्य जीवन में सिर्फ यही चिंता करनी चाहिए कि कहीं ये मनुष्य जीवन ही भगवत प्राप्ति के बगैर यदि खत्म हो गया तो न जाने कब मिलेगा। इसलिए इसी जीवन में भजन कर लेना चाहिए, इसी जीवन में साधना कर लेनी चाहिए, तपस्या कर लेनी चाहिए। बाकी जो विश्व को चला रहा है वो तुम्हें थोड़ी ना भूलेगा, वो तुम्हारे घर, तुम्हारे भाग्य का तुम्हारे घर तक पहुँचा देगा। जरा नाम जप करके उस पर विश्वास तो करके देखो। तो ऐसे विश्व भावन भगवान पश्यतात्मन मेषाणाम तत्रे वासं धर्म, सारे देवता जो थे वो भगवान को देख रहे थे ध्यान से, भगवान जब बता रहे थे ना ऐसा करो ऐसा करो, तो भगवान वैसे तो देवता बहुत ज्यादा सुंदर है, लेकिन भगवान बहुत सुंदर है, तो भगवान को देखते ही देखते तत्रे वासं धरे हरि, हरि जो थे ऐसा आदेश देकर अंतर ध्यान हो गए। और उसके बाद क्या हुआ, सारे देवता जो थे वो गए किसके पास, किसके पास जाना था, ऋषि मुनि के पास। और राजाणी वेदव्यास जी कहते हैं, तथा भी याचितो देव ऋषिराज अथरो महान, उसके बाद सारे देवी देवता मिलकर अभी याचितो जाके याचना की, जैसे भगवान ने बताया था ना, सेम टू सेम जैसा भगवान ने कहा एज इट इज वैसा ही जाके कहा सारे देवी देवताओं ने, जो कि अथर्व ऋषि के पुत्र थे ददीचि मुनि, वो बहुत महान थे। महान यहाँ पर लिखा हुआ है अथर्व महान, महान का मतलब होता है जो सारे विश्व के कल्याण के विषय में चिंतित हो। जो व्यक्ति केवल अपने भोजन, अपने वस्त्र, अपने आराम और अपने जीवन के विषय में सोचता है ना, उसको शास्त्र कभी महान नहीं बोलता है। और हम देखें यहाँ पर हम 99% यही करते हैं, केवल अपने विषय में ही तो चिंतित हो, है ना, मैं क्या खाऊं, मैं क्या पीऊं, मैं कैसे जीऊं, मैं कैसे रहूं, मैं कैसे प्राप्त करूं। लेकिन यदि महान बनना है तो जिस तरह दधीचि मुनि को भगवान ये संकेत कर रहे हैं कि आपको देवताओं के कल्याण के लिए अपना जीवन भी न्योछावर करना है, ऐसी कि हमसे उपेक्षा कर सकते हैं। अभी देवता आए हैं और दधीचि मुनि को क्या बोलते हैं कि हमें क्या चाहिए, भगवान ने हमें भेजा है आपकी हस्तियां लेने। सोच सकते हैं उस समय उसके मन पर क्या बीती हुई। हमारे घर पे यदि कोई सुबह सुबह आए, बेल बजाए और हम बोले कि भाई आपको क्या चाहिए, और बोले भाई आपकी हड्डियां लेने के लिए आए, क्या हम सोच सकते हैं कि हम उन्हें उसी टाइम पर दरवाजा बंद करके देखो दिखा रहे हैं भागो हड्डियां लेने आयो, हड्डियां कोई लेने की चीज है, मर जाऊंगा ना हड्डियां दूंगा तो। लेकिन यहाँ पर कहते मोदमाना, मोदमाना मतलब जैसे ही ऋषि ऋषि ने सुना कि भगवान ने भेजा है, उसी टाइम पर मोदमाना बहुत बहुत आनंदित हो गया, हृदय प्रफुल्लित हो गया ये सोचकर कि ये शरीर जो किसी काम आने वाला नहीं है, वैसे भी आज नहीं तो कल मुझे इसको छोड़ना ही है ना, आत्मा शरीर को तो छोड़ के ही जाएगी, और ये शरीर मनुष्य का पता है किसी कोड़ी में भी बिकने वाला नहीं है, है ना। पशुओं के शरीर तो फिर भी काम आते हैं, है ना, उनसे लेदर निकलता है, पर्स बनते हैं, शूज बनते हैं, बेल्ट बनते हैं और बहुत सारी चीजें, ये मनुष्य शरीर किसी काम भी नहीं आता। उसको तो आनंद आ गया, मोदिता, उसको तो खुशी हो रही थी कि ये मेरा शरीर काम आने वाला है, वो भी देवताओं के साक्षात भगवान ने आदेश दिया है। लेकिन फिर भी उवाचेदम प्रहसन्निव भारत, परीक्षित महाराज को कहते हैं हृदय से तो आनंदित थे लेकिन हंसकर देवताओं को बोले ये क्या बात है, ऐसा भी कोई मांगता है, मुझसे मेरी हड्डियां मांगने आयो, हड्डियां कोई भला कोई दे सकता है, तुम सोचो तो सही क्या मांगने आए हो, जरा सोच कर विचार तो करो। तब वो कहते हैं अभिनंदारकायुयम् न जानी च शरीरणाम् संस्थायाम् यत्र यत्र विद्रोह दुःसहश्चेतनामः। अभिनंदारकायुयम् देवताओं को कहते हैं वृंदारका, देवताओं को वृंदारका पता है क्यों बोलते हैं, वृंद किसको बोलते हैं, हम बोलते हैं ना भक्त वृंद, यानी कि जो समूह में रहते हैं एक साथ रहते हैं, देवताओं को कभी अकेले अकेले भटकते हुए नहीं देखते हम लोग, हमेशा समूह में जाते हैं, एक साथ जाते हैं, इज्तमा में जाते हैं। तो यहाँ देवताओं को कहा गया वृंदारका क्योंकि आप समूह में रहते हो, यानी कि ये जो समूह का गुण है, एक साथ रहने का गुण किसका है, देवताओं का गुण है। इसका मतलब है कि भक्तों को भी सदा टोली में रहना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए, अकेले में भक्ति नहीं होती है, हमेशा संकीर्तन की महिमा कही गई है कि हम मिलकर भगवान की भक्ति करें, मिलकर भगवान के विषय में कोई कोई भी ओकेजन हो, कोई भी सेलिब्रेशन हो, मिलकर करना चाहिए, इससे देवताओं का गुण कहते हैं। इसलिए क्योंकि अकेले में यदि भक्ति करेंगे ना तो उसका कोई मापदंड ही नहीं होगा, अकेले में बैठ के माला भी करते हमें पता होता आधी माला सोकर निकलती है, तो मिल की भक्ति करनी चाहिए। इसलिए देवताओं को कहा अभी वृंदा रखा न जानी तो शरीर, देवताओं के मुख से जब उन्होंने सुना कि आप हमें हड्डियां दो, तब वो कहने लगे आपको पता नहीं है न जानी तो शरीर न, कि शरीर से जीव का कितना मोह होता है, और शरीर से जब प्राण निकलते हैं उस टाइम पर संस्थायाम यत् भद्रो हो दुःसहश्चेतनापः, कि जब शरीर से प्राण निकलते हैं तब उस टाइम पर इतना दुख होता है, इतना कष्ट होता है जो बिल्कुल असहनीय होता है। मृत्यु कितना कष्टदायक होती है आप नहीं जानते, आप तो देवता हो अमर हो, लेकिन जो मनुष्य जब उसकी मृत्यु होती है इतना तीक्ष्ण असहाय वेदना उसको प्राप्त होती है, और आप मुझे बोल रहे हो हड्डियां दे दो। खुद सोचो तो सही, जब हड्डियां मेरे शरीर से निकालोगे तो मुझे कितना कष्ट होगा। क्या तुम्हें इस वेदना का जरा भी पता नहीं है? थोड़ा सा भी यदि तुम्हें अनुभव होता कि किसी जीव से यदि उसके प्राण मांगने से मांगते हैं, जब भी उससे प्राण लेते हैं तो उसको कितना कष्ट होता है, और आपने बिल्कुल इसके बारे में सोचा भी नहीं। आगे कहते हैं, जी जी विषोणाम जीवाना आत्मा प्रेषित का उत्सहित संघातु विक्षमाणाय वैष्णवे। समझो, इंद्र ने बोला कि हम जानते हैं कि कष्ट होता है, लेकिन हम अपनी तरफ से थोड़े आए हैं, भगवान ने हमें भेजा है ना, और तुम्हें तो वैसे भी ये शरीर किसने दिया है? भगवान ने दिया हमको ये शरीर। किसने दिया? भगवान ने दिया है। भगवान ने हमको दो आंखें दी, अंधा नहीं बनाया। भगवान ने हमको दो कान दिए, बहरा नहीं बनाया। भगवान ने हमको चार बाजु सलामत पैदा किया, लूला लंगड़ा नहीं बनाया। फिर भगवान यदि मांगते हैं तो हमें दे देना चाहिए, ये तो भगवान का ही है ना। लेकिन भगवान भी मांगते नहीं है क्योंकि उन्हें पता है देंगे नहीं। इसलिए भगवान ने भगवद गीता में ये नहीं बोला कि हमें हमारा शरीर दे दो जो दिया है। भगवान ने क्या बोला? केवल मान दे दो बस। लेकिन जीव इतना नमक हरामी है, इतना सब कुछ दिया जिसने, जिन्हें शरीर दिया जिन मिसराया, उनको भूल जाते हैं शरीर प्राप्त करने के बाद, और हर उसको मन में बिठाते हैं जो संसार है। संसार की हर वस्तु को, व्यक्ति को मन में बिठाएंगे। भगवान ने बोला मुझे बिठाओ, भगवान को नहीं बिठाएंगे। यहाँ तक कि और कुछ नहीं, भगवान ने कहा आप संसार में जाओ, मेरी भक्ति करो। भक्ति का प्रथम चरण है श्रवण करना, और श्रवण करने में भी हमको कष्ट महसूस होता है। कितना सरल उपाय है भगवत प्राप्ति का कि बैठो बस श्रवण करो, और बैठते हैं श्रवण करने के लिए आधे घंटे के बाद तो कमर दुखने लगती है। क्या अब तो कथा खत्म होनी चाहिए? क्या ये ही हम भगवान के उपकारों का बदला दे रहे हैं? तो यहाँ पे तो बोल रहे हैं कि का उत्सहेता तम धातु, वो दधीचि मुनि बोल रहे हैं कि ठीक है मैं मानता हूँ कि भगवान ने ये शरीर दिया है, सबको दिया है। किसी से भी पूछो क्या वो अपना शरीर देगा, क्या वो हड्डियां निकाल के देगा? और तुम मांग रहे हो मुझसे मेरी हड्डियां मांगने के लिए, क्या कोई भी देगा? नहीं, भले भगवान ने दिया है लेकिन कोई भी देगा तो नहीं। ऐसा कभी हुआ क्या किसी ने अपना शरीर काट के दिया हो? तब देवराज इंद्र कहते हैं कि हम तो आपको बहुत महान समझकर आए थे। अब देवराज इंद्र जो हैं, क्योंकि उनको तो हड्डियां लेनी है उसकी, और वो कुछ ऐसा करके कहेंगे कि वो कैसे ही तरह से उससे उसकी हड्डियां निकल डाले। तो यहाँ के देवताओं से हमें ये सीखना चाहिए कि यदि किसी से कुछ लेने जाए तो हमारे पास बहुत सारे तर्क होने चाहिए कि ये इसके कारण दो, इसके कारण दो। यदि किसी से कोई डोनेशन वगैरह नहीं हो तो बहुत सारे तर्क लेके जाना चाहिए। तो ये सारे देवी देवता कहते हैं कि साधारण व्यक्ति और आपके अंदर तो डिफरेंट है ना। हम किसी साधारण व्यक्ति से तो उसकी हड्डियां लेने के लिए नहीं आए हैं। आप तो महान हो, और आपके महान की गाथा तो भगवान विष्णु ने गाई है। साक्षात भगवान विष्णु ने कहा है दधीचि मुनि के पास जाओ, वो दे देगा, और आप फिर भी नहीं दे रहे हो। मतलब फिर आप में और हम में क्या फर्क हुआ? वो बोला, दधीचि मुनि बोलेगा कि आपको नहीं पता कि संसार में जब किसी के प्राण निकलते तो कितना दुख होता है? तो इंद्र बोलता है आपको नहीं पता कि हमारे ऊपर कितना संकट है? बोले ठीक है मुझे पता है कि आपके ऊपर इतना संकट है, लेकिन मेरे संकट का तो सोचो। आपको खाली अपना ही संकट दिख रहा है, मेरे शरीर की हत्या हो जाएगी, मेरी मृत्यु हो जाएगी, उसके विषय में तुम्हें जरा भी चिंता नहीं है? तुम भी तो सिर्फ अपने विषय में ही सोच रहे हो ना। तब इंद्र बोलते हाँ मैं अपने विषय में सोच रहा हूँ, और तुम अपने विषय में सोच रहे हो, तो फिर हम दोनों का कोई फर्क तो नहीं हुआ ना। हम तो नहीं कह रहे ना आप महान, हम महान है। भगवान ने तो कहा दधीचि मुनि महान है, और केवल एक आपके मरने से यदि सारे देवताओं की रक्षा हो रही है तो ये सौदा तो आसान है, मतलब सस्ता है। है ना, सिर्फ आपको एक अकेले को प्राण देने पड़ेंगे और सारे देवी देवताओं की रक्षा होगी, और जब सारे देवी देवताओं की रक्षा हो जाएगी तो सारे जीवों की रक्षा हो जाएगी। बोले ऐसे कैसे, कभी किसी ने अपना शरीर दिया है किसी की रक्षा करने के लिए? तब इंद्र एक इतिहास सुनाते हैं कि हम तो देवी देवता हैं, बड़े बड़े राजा हुए ऐसे, जो पंछियों को भी मरने से बचने के लिए अपने शरीर को दे देते हैं। अच्छा, फिर बताते हैं महाराजा शिविर की कहानी कि एक राजा थे जिसका नाम था महाराजा शिविर, उनके पास उड़ते उड़ते एक कबूतर आ गया। उस कबूतर के पीछे एक चील लगी थी, वो चील उस कबूतर को खाने वाली थी। उस कबूतर ने जाकर महाराजा शिविर को कहा कि मैं आपसे रक्षा की प्रार्थना लेती हूँ, वो चील मुझे खा जाएगी, आप मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि मैं आपके राज्य में रहता हूँ, मैं आपकी प्रजा हूँ, तो मेरी रक्षा का उत्तरदायित्व तो आपका है। तब महाराजा शिविर ने कहा ठीक है, तो मेरी शरण में आए हो, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। थोड़ी देर के बाद चील आ गई और चील ने कहा, हे महाराज, मैं आपकी प्रजा हूँ और मैं भूखा हूँ, मेरी भूख की रक्षा करना यानी मेरे पेट को भरना भी तो तुम्हारा कर्तव्य है। तुम अगर उसकी, वो तुम्हारी प्रजा है, उसका रक्षण तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो मैं भी तुम्हारी प्रजा हूँ, मुझे भी खाना पहुँचाना तुम्हारा कर्तव्य है, तो तुम मुझे कैसे रक्षण प्रदान करोगे? तुम एक कबूतर मुझे वापस दे दो, क्योंकि मैं इसे खाना चाहता हूँ, इसी से मेरी भूख शांत होगी। तब राजा ने कहा कि नहीं, इसको तो मैं रक्षा करूंगा, लेकिन फिर बोला मुझे क्या खिलाओगे? बोला मैं अपने शरीर का मांस निकाल कर तुमको खिलाऊंगा, मेरे शरीर का मांस जितना इसका कबूतर का मांस है ना, इतना मैं अपने शरीर का मांस दूंगा। राजा ने एक बहुत बड़ा तराजू मंगाया और तराजू में एक साइड पे कबूतर को रखा और एक साइड पर अपने जांघ को काट कर, अपने जांघ का मांस काट के रखा, और जब तोलने लगे तो कबूतर का वजन बहुत नीचे था, वो तो वजन पूरा हुआ ही नहीं। फिर उसने क्या किया, दूसरे जांघ का भी मांस काट के निकाल के रखा, लेकिन फिर भी वो अभी तक ऊपर तो नहीं हो रहा था। फिर उसने पूरी टांग काट के निकाल दी दाएं वाली, वो रख दी थी, लेकिन फिर भी कबूतर का वजन ज्यादा था। उसके बाद अपनी बाई का टांग भी काट के फेंक दी, उसके अंदर रख दी तराजू के अंदर, लेकिन फिर भी वजन पूरा नहीं हुआ। फिर दाएं हाथ से बायां हाथ काटकर उस तराजू में रखा, लेकिन फिर भी कबूतर का वजन ज्यादा रहा। फिर अपने सैनिकों को बुलाया, बोला मेरा दाया हाथ भी काट दो और इस तराजू में रख दो, फिर भी वजन पूरा नहीं हुआ। अब क्या करता, मरने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अपने सैनिकों को बोला, सर काट दो और ध्यान भी रख दो, इस जीव को दे देना मेरे मरने के बाद। जैसे ही सैनिकों ने गर्दन काटने के लिए छुरी चलाई, उस टाइम पर भगवान प्रकट हुए। उसकी भगवान ने आदेश दिया था इंद्रदेव और सूर्यदेव को, तो इंद्रदेव और अग्निदेव को कि जाओ और महाराजा शिविर से उसकी दान वीरता की परीक्षा ले। तो उसी टाइम पर वो आ गए थे। लेकिन यहाँ पर तो ऋषि मुनि को कहते हैं कि ऐसा जब कबूतर के लिए भी वो राजा अपने प्राण दे सकता था, और हम तो देवता हैं और देवताओं के लिए भी तुम इतना नहीं कर सकते, तुम अपने शरीर को नहीं दे सकते। आगे कहते हैं देवता लोग कहते हैं कि ब्रह्मन पुंसाम भूतानुकंपिनाम किन्नु दुस्त्यजम ब्रह्मन, हे ब्रह्मन आप तो कितने उदार हो, कितने महान हो, और आपके लिए ऐसा क्या है जो त्यागना संभव नहीं है, आप तो कुछ भी कर सकते हो। इसलिए पुंसा भूतान कंपना, क्योंकि सारे जीवों पर अनुकंपा जो करते हैं वही तो ऋषि कहलाते हैं, वही तो आप जैसे महान व्यक्ति होते हैं जो सारे जीवों पर को कल्याण करते हैं, तो आपके लिए कुछ भी त्यागना कठिन नहीं है, असंभव नहीं है। भवत विदाना महताम पुण्य श्लोके ये करना, इसलिए क्योंकि साक्षात भगवान भी आपकी महानता को गुणगान करते हैं, वे आपके लिए ऐसा कह रहे थे कि आप दे दोगे अपनी हस्तियाँ, इसलिए आप आसानी से दे दोगे हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पर आके हमें लगा कि आप भी सामान्य देहधारियों के लिए अपने देह के सामान्य देहधारियों की तरह अपने देह के लिए इतना परेशान हो, इसलिए हमें यकीन नहीं आ रहा है कि आप वही हो जिसकी इतनी महानता भगवान हो गए थे। आगे कहते हैं नूनं स्वार्थ परो लोको न वेद पर संकटम यदि वेद न चाहेत नीति नाम यदीश्वरम। वो कहते हैं दरीचे ऋषि कहते हैं नूनं स्वार्थ परो लोको, आप तो अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो गए हो देवताओं, आप देवता हो सबकी इंद्रियों पर रहते हो, देवता होकर भी आप मेरे कष्ट को नहीं जानते, मेरे भी तो इंद्रियों पर आप भी बैठे हुए हो ना, तो न मेरे पर संकट, अगर मेरे कष्ट को जानते तो आप मुझसे ऐसा बोलते नहीं। यदि मेरा चाहिए था, यदि आप हमारे संकट को जानते तो आप मुझसे ये मांगते नहीं। और वो देवता कहते हैं कि यदि आप हमारी विडम्बना को जानते, हमारी प्रॉब्लम को जानते तो आप मना नहीं करते। तो ऐसे आपस में वो बोल रहे थे कि आपने अच्छा नहीं किया मुझसे मांगकर, और वो बोल रहे थे आपने अच्छा नहीं किया ना दे। तो ये सब जो बातें हो रही थी वो सब केवल विनोद में हो रही थी, केवल मजाक में हो रही थी, क्योंकि जैसे पहले बताया कि दधीचि ऋषि तो भगवान का आदेश सुनकर पहले से ही बहुत प्रसन्न हो गए थे कि मेरा ये शरीर अब भगवान की आज्ञा के अनुसार देवताओं के संकट को खत्म करने के लिए अभी ये शरीर का उपयोग होने वाला है। तो वो देवताओं को कहने लगे कि नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, ये शरीर आपके काम आएगा, इससे बड़ा तो मेरे लिए और कोई सौभाग्य हो नहीं सकता। इसलिए श्लोक नंबर 7 में ऋषि कहते हैं ऋषि को श्री कहा गया, श्री का मतलब होता है धन दौलत, ऋषि के पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। ऋषि का मतलब श्री का मतलब होता है सुंदरता, ऋषि तो बूढ़ा था, श्री का मतलब होता है बहुत ज्यादा धनवान शक्तिमान, लेकिन उसके पास तो कुछ भी नहीं था। वास्तव में जिसको हम श्री समझते हैं, जिसको हम धन समझते हैं, जिसको हम सौभाग्य समझते हैं, वो वास्तव में सौभाग्य नहीं है, वो वास्तव में धन नहीं है। धन तो भगवान की भक्ति है जो ऋषि के काम है। इसीलिए वेद व्यास से कहते हैं श्री ऋषि वाच, ऋषि ने कहा धर्मावह श्रोत कामानां यूयं मे प्रत्युदाहृता एषम प्रियमात्मानं त्यजन्तं सत्यजाम्यहम्। धर्मावह श्रोत कामानां, हे देवताओं मेरे हृदय में इच्छा उत्पन्न हो गई थी कि अभी मैं मरने ही वाला हूँ, तो मरते मरते आपके मुख से कुछ धर्म का उपदेश होता है, क्योंकि मरते के समय यदि आपके मुख से यदि किसी शुद्ध भक्त की, किसी भगवान की कोई भी शुद्ध उपदेश यदि धर्म का हमें मुझे सुनने को मिल जाएगा, फिर मुझे पता है कि मेरा कल्याण होगा। वो इतनी तपस्या करके आए थे, है ना, इतनी तपस्या की थी कि भगवान भी बोल रहे थे कि भाई इतने बहुत तपस्या की है इसलिए इसकी हड्डियों में बहुत पावर है, वो भी कह रहे हैं कि मरते मरते कुछ सुनना चाहता था। यहाँ से हम सुन हो सकते हैं कि भगवान की कथा को श्रवण करने का कितना लाभ है। परीक्षित महाराज मरने वाले थे, वो भी बोल रहे सुनाओ मुझे और सुनाओ। सुखदेव गोस्वामी ने बोला थोड़ा सा आराम कर लो, कुछ खा पी लो। बोला नहीं, अभी आराम और खाना पीना कुछ अच्छा नहीं लगता, केवल श्रवण में ही मेरी स्थिति है। कितना महत्व है इस श्रवण को, और हम इच्छा नहीं करते इस श्रवण की। तो वे कह रहे धर्म श्रोत कामा, मेरी इच्छा हो गई थी कुछ धर्म का उपदेश करने से, यूयम में प्रत्युदाहृता, इसलिए मैं आपको ऐसे बोल रहा था कि मैं नहीं दूंगा। प्रत्युदाहृता मतलब मैं मना इसलिए कर रहा था ताकि मुझे कुछ भगवान की कथा सुनाओ। एषः प्रियमात्मानं, ये तो मेरे लिए बहुत ही आनंद की बात है कि भले ही शरीर से सब लोग प्रेम करते हैं, लेकिन ये शरीर यदि आपके संकट को दूर करने के लिए काम में आ जाएगा तो इससे बड़ा तो मेरे लिए कोई सौभाग्य नहीं है। तो इसलिए त्यजस्यम संत्य संत्य जाम्यहम, इसलिए मैं इस शरीर को त्यागने के लिए तैयार हूँ और आप लोगों की सुरक्षा करने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और अब इसके बाद क्या होगा, ददीशी ऋषि जो है वो अपने शरीर को किस तरह से त्यागते हैं, किस तरह से वहाँ से हड्डियाँ निकाली जाती हैं और किस तरह से इंद्र के लिए वज्र बनता है, वो हम नेक्स्ट वीक में पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सामने दीजिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से करूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण की हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। धन्यवाद, आप हरे कृष्ण महामंत्र की। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, यदि किसी का कोई भी प्रश्न है इस टॉपिक पर या कोई भी टॉपिक पर तो पूछ सकते हैं। नहीं तो हम एक माला करेंगे, सब अपनी अपनी माला निकालिए। माला के बीच में कोई बात नहीं करेगा, सब ध्यान से, जिनके पास माला नहीं है वो भी हमारे साथ साथ उच्चारण करेंगे, उनकी भी माला है। पता है समूह में माला करने का एक लाभ ये भी होता है कि सबकी माला का प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमारी माला अच्छी होती है। और कभी कभी तो ये भी कहा जाता है जितने लोग माला करते हैं उनको सबका लाभ प्राप्त होता है, उतना लाभ प्राप्त होता है। माना अगर यहाँ पर 50 लोग हैं तो फिर 50 माला का लाभ प्राप्त होगा, इसलिए ध्यान से माला कीजिएगा, ठीक है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवी गौरवभक्तवृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
श्रीमद् भागवतम् महाप्रभु गौरव्रमणे।